आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमांशी भारद्वाज और मैं आपके साथ आपकी क्लास 9 की साइंस की बुक को डिस्कस करूंगी। तो आज हम इस ऑडियो में चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी अपने बुक का पेज नंबर 1 ओपन कीजिए और हम पढ़ना शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हमें जानना है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास। यानी कोई भी मटेरियल है, कोई भी वस्तु हमारे सामने है जिसका अपना एक भार है, एक मास है, यानी एक वजन है, और इसके साथ साथ वो एक स्पेस को, एक जगह को घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास के एनवायरमेंट में, हमारे आसपास की जगह पर जो भी चीजें हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं। एयर हो सकती है, कोई टेबल हो सकती है, अलग अलग साइज की कोई भी चीज जो भी हम अपने आसपास देखते हैं उसको मैटर कहेंगे। तो ये हुआ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ से। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स and animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter. We can also see, as we look around, that all the things mentioned above occupy space, that is, volume and have mass. So, अगर हम पहले पैराग्राफ के बारे में डिटेल में जाएं, उसके बारे में आपको बताएं, तो यहाँ ये बताया गया है कि जब हम अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास में देखते हैं तो हम अलग अलग चीजों की वैरायटी देखते हैं, विभिन्नता देखते हैं उनके शेप्स में, यानी उनकी जो बनावट है, उनका साइज, वो बड़े हैं, छोटे हैं, और उनका टेक्सचर्स। टेक्सचर्स का मीनिंग होता है कि उनको जब हम टच करते हैं तो उनका टेक्सचर किस तरीके का है, वो रफ है, वो सॉफ्ट है, इस तरीके से। और एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। साइंटिस्ट ने कहा है कि इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो मटेरियल से मिलकर बनी है और उन चीजों को ही नाम दिया गया है मैटर। आगे बोला गया कि जो हवा हम जिसके द्वारा ब्रीदिंग करते हैं, द एयर वी ब्रीद, द फूड वी ईट, यानी कि जो हवा हम ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, पत्थर, क्लाउड्स यानी बादल, तारे, पौधे और एनिमल्स या जानवर, इसके अलावा एक छोटी सी पानी की बूंद भी क्या होती है? मैटर होती है। पार्टिकल ऑफ सैंड, एक पार्टिकल ऑफ सैंड यानी मिट्टी का एक कण भी मैटर कहलाता है। We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space, that is volume and have mass. यहाँ पर आपको बताया गया है matter की definition. Means, जिस भी चीज को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसमें आप देखेंगे कि वो एक space को occupy करती है, यानी उसका एक अपना volume होता है, के साथ साथ उसका अपना एक मास है, मींस उसका अपना एक भार है या वजन है, तो वही होता है मैटर। ये हुआ आपका फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अगर हम आदि काल से बात करें या पहले की बात करें, तब से लेके आज तक ह्यूमन बींग्स, मेनली साइंटिस्ट, ये कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या है और उसको समझने में लगे हुए हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। इन्होंने बताया कि जो पुराने इंडियन फिलोसफर्स हैं, जैसे कि कुछ ऋषि मुनि हुए पहले, उन्होंने बताया कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, और उनको हम अपनी हिंदी भाषा में या फिर अपनी संस्कृत भाषा में पंच तत्व कहते हैं। और उन पंच तत्व के अंदर कौन कौन से 5 तत्व हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर मीन्स वायु, अर्थ मीन्स पृथ्वी, फायर मीन्स अग्नि, स्काई मीन्स आकाश एंड वाटर मीन्स जल। पहले के फिलोसफर्स ये मानते थे कि कोई भी मैटर इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है, आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अनुसार कोई भी वस्तु, या तो वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी थिंग है, अगर वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो इन 5 बेसिक तत्वों से, इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई होती है। उसका कॉम्पोजिशन इन 5 तत्वों का होता है। उनका ये भी मानना था कि जो ह्यूमन बॉडी है या मानव शरीर है वो भी इन 5 तत्वों का बना हुआ है, और अंत में मृत्यु के बाद जब भी किसी ह्यूमन बींग की डेथ हो जाती है तो ये 5 तत्व वापस यूनिवर्स में मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, जो ग्रीस के फिलोसफर्स थे पुराने, वो भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचे थे, और उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का, इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया मैटर का। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो जो आज के साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देते हैं। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें किसी मैटर का या किसी एलिमेंट का फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताए, या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, डेंसिटी, उसकी हार्डनेस क्या है, ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं। एंड द प्रॉपर्टीज बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज और कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो वाली प्रॉपर्टीज जिससे हम किसी एलिमेंट का या किसी मैटर का एक दूसरे किसी नए सब्सटेंस में पूरी तरीके से चेंज हो जाने को जानते हैं, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। जैसे फ्लेमेबिलिटी या करोजन या ऑक्सीडेशन, और मे बी रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। तो रिडॉक्स रिएक्शन आर अ पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1.1, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ आपको बताया है दैट इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो आप इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर को आगे के चैप्टर्स में डिस्कस किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 1.1, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसका सब टॉपिक है 1.1.1, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जो मैटर होता है उसका वो कॉम्पोजिशन क्या है, किससे मिलकर बना है? पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो उसी को अब हमें पढ़ना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। तो बहुत पहले 2 तरीके की सोच विख्यात थी, 2 तरीके के स्कूल्स में ये बात मानी जाती थी कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस बना हुआ है या कंटिन्यूस नेचर का है, जैसे किसी लकड़ी का कोई ब्लॉक। जबकि किसी दूसरे स्कूल का ऐसा मानना था कि मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, सैंड के पार्टिकल्स की तरह मैटर होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। डिफरेंस क्या है कि वुड जो होती है या लकड़ी जो होती है उसके ब्लॉक के अंदर जो आपको पार्टिकल्स मिलेंगे दे आर कंटिन्यूस, दे आर इन द कंटिन्यूस नेटवर्क, वो एक कंटिन्यूस नेटवर्क में होते हैं, आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। बट अगर हम सैंड की बात करें, इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व्ड सैंड, तो आपने सैंड में देखा होगा दैट देयर आर पार्टिकल्स स्कैटर्ड, वो स्कैटर्ड फॉर्म में पार्टिकल्स होते हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन देम, उनके अंदर काफी सारा गैप होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ वुड एंड सैंड। तो इनके आधार पर दो स्कूल्स थे जिनकी मान्यता अलग अलग थी। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। तो कंटिन्यूअस कौन सा वाला था, ब्लॉक ऑफ वुड वाला, और पार्टिकुलेट कौन सा है, सैंड वाला। तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे एंड लेट अस डिसाइड कि नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है। सो लेट स्टार्ट द एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.1, टेक अ 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आप एक 100 ml का बीकर लेंगे और उसको हाफ भरेंगे पानी से एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आप लेवल ऑफ वाटर जो आपने हाफ लिया है उसको किसी मार्कर पेन से आप मार्क कर देंगे दैट इट इज द लेवल ऑफ वाटर। देन डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। थोड़ा सा नमक या चीनी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको उसके अंदर घोल दीजिए, डिजोल्व कर दीजिए एक ग्लास रॉड के हेल्प से, और आप स्टिरर भी ले सकते हैं जो लैब में अवेलेबल होता है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। आप देखिए कि ऐसा करने के बाद वाटर लेवल में कोई चेंज आया है, क्या वो इंक्रीज हुआ है या वो डिक्रीज हुआ है। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपीयर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो यहाँ तीन क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए गए हैं कि आपने जब उसको वाटर लेवल को ऑब्जर्व किया देन कोई चेंज उसके अंदर हुआ, जो सॉल्ट था उसके साथ क्या हुआ, वो डिसअपीयर कैसे हो गया, और वाटर लेवल में कोई चेंज आया। ये तीन क्वेश्चंस आपसे इस एक्टिविटी के बेसिस पर पूछे गए हैं। आगे देखें, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमको ये आइडिया लेना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। जो भी आपने लिया, आपने चाहे सॉल्ट लिया हो या आपने शुगर लिया हो, दोनों को जब आपने उसके अंदर घोल दिया तो वो पूरे के पूरे पानी के अंदर स्प्रेड आउट हो गया, फैल गया, और बाद में आपने देखा कि वो डिसअपीयर हो गया। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। तो अब आप फिगर 1.1 को देखेंगे, आपको एक बीकर दिया है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्निफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। पानी को जब हम देखते हैं तो एक यूनिफॉर्म हमको मटेरियल दिखाई देता है, लेकिन इसको यहाँ पर मैग्निफाई किया गया है मिलियन ऑफ टाइम्स। देन उसके आगे वाटर में आपने सॉल्ट ऐड किया और किसी स्टिरर से उसको मिक्स कर दिया। देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाटर, वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गए हैं। तो इस फिगर में यही बताया है दैट व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, 1.1.2, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अभी हमने जान लिया कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पर इनका साइज कितना स्मॉल होता है अब हमें वो जानना है। उसके लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1.2। टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। आप इसको केमिस्ट्री लैब के अंदर करेंगे। आपको 2 से 3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के और उनको 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करना है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इन टू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब आपको इसके अंदर से 10 ml सॉल्यूशन निकाल लेना है एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब इस जो भी सॉल्यूशन आपने निकाल लिया 10 ml, उसको 90 ml या 90 ml क्लियर वाटर के अंदर डाल देना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब ये जो 10 ml सॉल्यूशन था, इसको दोबारा से निकालिए 10 ml को उसी सॉल्यूशन में से और फिर दोबारा 90 ml क्लियर वाटर के अंदर डाल दीजिए। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। इज द वाटर स्टिल कलर्ड? तो अब आपको ये करना है, इस एक्टिविटी से आपको ये देखना है कि बार बार आप 10 ml निकाल के उसको 90 ml पानी के अंदर डाइल्यूट कर रहे हो तो पानी का वो चेंज कलर चेंज हो रहा है या नहीं, इसे आप समझेंगे फिगर 1.2 से देखकर। एक बीकर है, बीकर के अंदर 100 ml वाटर है, देन सेकंड बीकर के अंदर आपने 5 to 7 क्रिस्टल्स पोटेशियम पर मैग्नेट के डाल दिए, देन आपने 10 ml उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया सॉल्यूशन और एक 90 ml वाटर के अंदर उसको डाल दिया। देन जो अब सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ इसके अंदर से, देन फिर आपने 10 ml एक्सट्रैक्ट किया और उसको फिर 90 ml पानी के अंदर डाल दिया। फिर इसमें से दोबारा एक टेस्ट ट्यूब में आप 10 ml लेंगे और उसको भी एक और 90 ml वाले बीकर, ml वाले पानी वाले बीकर के अंदर डाल देना है। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या पानी का कलर चेंज हुआ है या अभी भी वो कलर्ड है, आपको ये चेंज देखना है, ऑब्जर्व करना है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉटर अबाउट 1000 liters। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. Ultimately, a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. So, इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकला? ये कंक्लूजन निकला कि जो पोटेशियम परमैग्नेट का एक क्रिस्टल है उसके अंदर काफी सारे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और वो टाइनी पार्टिकल्स बार बार डाइल्यूट करने पर भी कैपेबल होते हैं 1000 liters को कलर करने के लिए। जब हम उसको रिपीटेडली डाइल्यूट करते रहते हैं, अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी जब पानी का कलर नहीं बदलेगा। इट मींस कि अब वो पोटेशियम परमैग्नेट के जो पार्टिकल्स हैं वो खत्म हो गए हैं। ये वाली एक्टिविटी आप डेटॉल के साथ, 2 ml डेटॉल के साथ भी कर सकते हैं अगर पोटेशियम परमैग्नेट अवेलेबल नहीं है। आप उसकी स्मेल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो ये एक्टिविटी आपको करना है और इससे आपको पता करना है कि कितना छोटा साइज होता है पार्टिकल्स का। ब्लू बॉक्स को देखिए। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। तो ये कंक्लूजन निकला है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 2 पर 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब हमें पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं उनको जानना है। तो 1.2.1 जो सब टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं उसको जानना है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉटर। हमने पिछली दोनों एक्टिविटीज 1.1 और 1.2 के आधार पर ये जाना कि शुगर के पार्टिकल्स या सॉल्ट के पार्टिकल्स, इवन डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स भी पानी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इन टू द स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसी तरीके से, इसी प्रकार से जब भी हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, घर में नींबू पानी या शिकंजी बनाते हैं, तो एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं, कहां पर, उनके स्पेसेस में जाकर। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यही बताता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में काफी सारे स्पेसेस होते हैं, जिसके कारण दूसरा कोई मैटर उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये पहला था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट है 1.2.2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये जो पार्टिकल्स मैटर के अंदर प्रेजेंट हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है। लेट्स बिगिन विद एन एक्टिविटी 1.3। अब एक एक्टिविटी दी है 1.3, उससे हम शुरू करते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। आप एक अगरबत्ती, लीजिए, बिना जलाए उसको अपनी क्लास के कॉर्नर में रख दीजिए। अब आप उसकी स्मेल को लेने के लिए आपको उसके कितने करीब जाना पड़ता है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो दैट यू कैन गेट इट्स स्मेल। आपको उसके कितने निकट जाना पड़ेगा उसकी स्मेल को लेने के लिए। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अब उसको जला दीजिए, उसको लाइट कर दीजिए। व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, क्या आपको उसकी स्मेल दूर बैठे हुए भी आ रही है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड कीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट एक्टिविटी, 1.4, टेक टू ग्लासेस और बीकर्स फिल्ड विद वॉटर। आप दो ग्लासेस या दो बीकर लीजिए जो पानी से भरे हुए हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। अब आप एक ड्रॉप ब्लू इंक या रेड इंक केयरफुली डालिए साइड से पहले वाले बीकर में, और सेकेंड बीकर में आप हनी डालिए इन द सेम वे, कॉर्नर पर से डालना है आपको। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर इन द क्लास। अब उसको अनडिस्टर्ब रहने दीजिए, उसको टच मत कीजिए फॉर अ व्हाइल, अपने क्लास में या घर पर, जहां पे भी आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस को अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। जब आपने पहले वाले बीकर में इंक ड्रॉप्स को डाला तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। और जब आपने सेकेंड बीकर के अंदर ड्रॉप ऑफ हनी को डाला तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वॉटर। और ये जो आपने इंक डाला है उसको कितने घंटे या फिर कितने दिन लगते हैं जिस पूरे के पूरे पानी के अंदर उसको इवनली स्प्रेड होने में। आपको अपने ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि इनका प्रोबेबल आंसर क्या होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। आप एक क्रिस्टल लीजिए कॉपर सल्फेट का या पोटेशियम परमैंगनेट का इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। मीन्स आपको एक तो डालना है कोल्ड वाटर के अंदर और एक डालना है आपको हॉट वाटर के अंदर। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन को घोलना नहीं है, स्टिर नहीं करना है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। जो क्रिस्टल्स आपने इसके अंदर अभी डाले हैं, ड्रॉप किए हैं, उनको सेटल होने दीजिए बॉटम पर, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? आपने क्या ऑब्जर्व किया उस सॉलिड क्रिस्टल को जो उस ग्लास के अंदर है, उसके ऊपर आपने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस? टाइम गुजरने के बाद उसके अंदर क्या होगा? What does this suggest about the particles of solid and liquid? ये क्या suggest करता है solid और liquid particles के बारे में? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? So these are some activities which have been given in your book. आपको इनको करके देखना है और उसके बाद आपके जो records आते हैं, observations आते हैं, उनको आपको note करना है और हम इसके सॉल्यूशन जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस है उनको नेक्स्ट एक्टिविटी में डिटेल में, नेक्स्ट ऑडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। कंक्लूजन दिया गया है आपकी बुक में बट ऑब्जर्वेशंस नहीं दिए हैं, सो हम इसको नेक्स्ट ऑडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। Particles of matter are continuously moving. That is, they possess what we call the kinetic energy. तो इन तीनों activities से यह conclusion निकलता है कि जो particles हैं matter के, वो continuously movement करते रहते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास अपनी एक kinetic energy होती है। As the temperature rises, particles move faster. जैसे ही उस medium का temperature बढ़ जाता है या उस मैटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट हो जाता है। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। सो हम ये कह सकते हैं कि जब भी टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी साथ में इंक्रीज करेगी। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, in the above three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. In tino activities ke basis par humne ye observations diye nikale ya dekhe that particles of matter intermix on their own with each other, yani wo apne aap jo particles hain matter ke jo particles hain wo khud se swayam apne aap दूसरे एक दूसरे में मिलने की शक्ति रखते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये क्यों संभव है, क्यों पॉसिबल है? बिकॉज देयर आर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की of two different types of matter कहलाती है diffusion। दो अलग अलग matter के particles का आपस में मिल जाना, intermix हो जाना ही diffusion कहलाता है। We also observe that on heating diffusion becomes faster. Why does this happen? हमने ये जरूर देखा कि जब भी हम heating करते हैं तो diffusion का rate बढ़ जाता है, fast हो जाता है। Why does this happen? ये क्वेश्चन किया गया है लास्ट में कि ऐसा क्यों होता है, Why does this happen? So आप आंसर नोट कर लीजिए if you want to do। इसका प्रोबेबल आंसर है जो ऊपर इसी पैराग्राफ में दिया है that as the temperature is increased, the kinetic energy of molecules gets increased। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की है वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस इंक्रीजेस द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिकॉज ऑफ विच द मैटर कैन डिफ्यूज इन मोर इजियर वे इनटू अनदर मैटर। तो इसके साथ क्या होगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो भी बढ़ जाएंगे, जिसके कारण जो मैटर है वो इजिली डिफ्यूज हो जाएगा दूसरे मैटर के साथ। तो ये रीजन है कि डिफ्यूजन रेट जब बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से डिफ्यूजन रेट भी बढ़ता है। मींस डिफ्यूजन रेट कब बढ़ रहा है? व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट डिफ्यूजन इंक्रीज हो रहा है और डिफ्यूजन इंक्रीज हो रहा है तो उसका रीजन ये है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हुए आपके टू कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आगे सेकेंड ऑडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।